जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 86। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त से भटकता है। यदि चित्त स्थित होता है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे है? तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदि भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र भाई नौकर आदि जो स्नेह के स्थान है और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से ही मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे रामचंद्र जी, मैंने अध ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, हृदय आकाश में जो चेतन चक्र है अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सभी दुखों का अभाव हो जावे। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासे तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं, वे सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेती कटती है तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरद काल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे रामचंद्र जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जावेगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती है और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहां शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है वहां शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं, प्राण जाने का भय नहीं रखते, तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है? हे रामचंद्र जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है, यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूं कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजी हैं। जैसे सूर्य के किरणों से मृग तृष्णा का जल दिखता है, तैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावे और द्वादश सूर्य इकट्ठे होके तपे, तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता, वह सदा शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उपजा है, सात लोक उसके पत्र है और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल है। वह मन संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण होता है। इसे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होगा, जिस पद में स्थित होने से चक्रवर्ती राज भी तृणवत भासता है। हे रामचंद्र जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और निर्विकार विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है उससे चित्त जन्म मरण आदि विकार को देखता है और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना होता है तैसे ही रूप होकर भासता है। जैसे बर्फ का शीतल और शुक्ल रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, यह मन जो वेग अवेग का कारण चंचल रूप है, उस मन की चंचलता कैसे निवृत्त हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम सत्य कहते हो, चंचलता से रहित मन नहीं दिखता, क्योंकि मन का चंचल स्वभाव ही है। मन में जो चंचलता फुरना मानसी शक्ति है वही जगत आडंबर का कारण है। जैसे वायु का स्पंद रूप है तैसे ही मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहित है उसको मृतक कहते हैं। हे रामचंद्र जी, तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है वह यही है कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। उसके क्षीण हुए सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जब चित्तरूपी राक्षस उठता है तब बड़े दुख को प्राप्त होता है और चित्त के लय होने से अनंत सुख भोग प्राप्त होते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप आत्मपद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, मन में चंचलता अविचार से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाती है। चित्त की चंचलता रूप जो वासना भीतर स्थित है, जब वह नष्ट हो तब परम सार की प्राप्ति हो। इसे यत्न करके चपलता रूपी अविद्या का तुम त्याग करो। जब चपलता निवृत्त होगी तब मन शांत होगा। सत्य असत्य और जड़ चेतन के मध्य जो डोलायमान शक्ति है उसका नाम मन है। जब यह तीव्रता से जड़ की ओर लगता है तब आत्मा के प्रमाद से जड़ रूप हो जाता है, अर्थात अनात्म में आत्म प्रतीति होती है। और जब विवेक विचार में लगता है तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है और केवल चेतना आत्म तत्व भासती है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है तैसे ही अनुभव इसको होता है। और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती है अभ्यास के वश से, तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त होता है और अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूं कि चित्त को चित्त से स्थिर करो और अशोक पद का आश्रय करो। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ है वे सब मन से उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं, और मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शांति को प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, मनुष्य बड़े संसार समुद्र में पड़ा है जिसमें तृष्णा रूपी सिवार ने इसको घेर लिया है। इस कारण अधः को चला जाता है और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उसे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। जब शुद्ध मन रूपी नाव पर आरूढ़ हो तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन को मन ही से छेदन करो और दृश्य की ओर जो सदा धावता है उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करो, तब छूटोगे, और उपाय छूटने का नहीं। जहां जैसी वासना से मन आशा करके उठे उसको वही बोध करके त्यागने से ही तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे रामचंद्र जी, जब प्रथम भोगों की वासना का त्याग करोगे तब यत्न बिना ही जगत की वासना छूट जाएगी। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प स्वरूप होगा। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है तब भावना करने वाला मन भी नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ संवेदन फुरता है उस संवेदन का होना ही जगत है और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इसे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही कर्तव्य है। जब भावना की अभावना हो तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या है। इसे इनकी आस्था को त्याग करो। ये सब अवस्तु रूप है और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त अपने आप में स्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से भासता है, तैसे ही आत्मा में जगत भी भ्रांति से भासता है। इसकी वासना तुम दूर से त्याग दो। हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान है उनको जगत नहीं भासता, और जो अज्ञानी है उनको अविद्यमान ही विद्यमान भासता है, और संसार नाम से संसार को अंगीकार करता है। ज्ञानवान सम्यक दर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप भासता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे होके भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने ही विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है, जो वास्तव में असत्य रूप है, क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है, जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है। न तुम करता हो न अकर्ता हो। कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, और जो कुछ क्रिया आचार आप्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो, अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं, पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल की मायावत है। हे रामचंद्र जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है, और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य की नहीं हो भासती है। हे रामचंद्र जी, चित्त में चैतन्यमय वासना फुरती है, सो ही मोह का कारण है। संसार रूपी वासना का चक्र है, जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैतन्यमय वासना फुरती है वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। वह विद्यारूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे ही यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही यह संसार भी असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। हे रामचंद्र जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होगा। कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है, और प्रकट आकार भी दृष्टि आते हैं पर मृत तृष्णा के जल समान असत्य रूप है। अविद्या माया जिससे यह जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है, और कहीं दीर्घ रूप भासता है, और आत्मा में व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ है परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती है, और चेतन रूप भासती है तो भी असत्य रूप है। एक निमेश के भूलने से वह बड़े भ्रम को दिखाती है। जहां निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है उसमें तम दिखाती है, मैं आत्मा को नहीं जानती। जहां निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है उसमें वह तम दिखाती कि मैं आत्मा को नहीं जानती। जैसे उल्लू को सूर्य में अंधकार भासता है, तैसे ही मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता, जगत भासता है जो असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रंग विलास विकार विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है, और स्त्री किनाई चंचल और क्षोभ रूप सर्पिणी है, जो तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है। वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है, जैसे जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है, और जब तेल चुक जाता है तब निर्वाण हो जाती है। तैसे जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि होती है, और जब भोगों से स्नेह नष्ट होता है तब वह भी नष्ट हो जाती है। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती, और भोग रूप प्रकाश बिजली किनाई चमत्कार करती है। इसके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होते, क्षण भंगुर है। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है, और वह तृष्णा देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख हैं। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।